अन्वय को आन्या पर पहले से ही गुस्सा आ रहा था, अब वो और भी अधिक भड़क उठा। वो आन्या के पास गया और गुस्से में उसका नाम पुकारा, आन्या। उसकी आवाज सुनकर आन्या, जो पोल पकड़कर लटकी हुई थी, उसकी आंखों में चमक और लबों पर गहरी मुस्कान फैल गई। वो अन्वय को निहारने में इतनी खो गई कि उसका हाथ फिसल गया। सोनिया चिल्लाकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, पर उससे पहले ही अन्वय हवा की गति से उसके पास पहुंच गया और आन्या को अपनी बाहों में थाम लिया। आन्या जरा भी नहीं डरी थी। उसने अन्वय की गर्दन में अपनी बाहें लपेट दी और उसे प्यार से देखते हुए मुस्कुराकर बोली, कितने अच्छे हो तुम, कितनी केयर करते हो। वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही अन्वय ने उसे खुद से दूर कर दिया। आन्या एक बार फिर सब भूलकर झूमने लगी। अन्वय ने नाखुशी से गर्दन दाएं बाएं घुमाई, फिर आगे बढ़कर उसके कंधों को कस के थामते हुए सख्त लहजे में कहा, आन्या शांति से खड़ी रहो। आन्या ने सर घुमाकर अपनी नशीली आंखों को टिमटिमाते हुए उसे देखना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, अन्वय ने उसके लबों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश कर दिया और उसे घूरते हुए बोला, एकदम शांत और चुपचाप खड़ी रहो, एक शब्द नहीं निकालना तुम्हें अपनी जबान से। आन्या अब अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए उसे देखने लगी, पर अन्वय ने उसे अनदेखा कर दिया और सोनिया की तरफ मुड़ते हुए सवाल किया, इसने ड्रिंक कैसे कर ली? अगर उसने कहा कि उसने जूस पिया था, मतलब उसने जूस ही पिया होगा, क्योंकि आन्या कभी झूठ नहीं बोलती। फिर ये नशा, क्या आप मुझे सच सच बता सकती हैं कि उस पार्टी में हुआ क्या था? मुझे नहीं पता, मैं जब आई तो आन्या नशे में फ्लोर पर डांस कर रही थी, मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं उसे यहाँ ले आई, फिर आपको कॉल कर दिया। सोनिया ने उससे कुछ सच तो कुछ झूठ मिलाकर कह दिया, पर अन्वय की तीखी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। मुझे सब सच सच जानना है, और अभी आपने जो कहा वो सच नहीं था। अन्वय की गहरी निगाहें सोनिया के चेहरे पर टिकी थीं। सोनिया ने अब सर झुकाकर कहा, मैंने सच ही कहा है, पर मुझे लगता है किसी ने आन्या के जूस में अल्कोहल मिला दिया होगा। ठीक है, मत बताइए, मैं खुद सारा माजरा पता लगा लूंगा। एंड थैंक्स आन्या का ध्यान रखने के लिए और मुझे इन्फॉर्म करने के लिए, अन्वय ने हमेशा वाले कोल्ड लुक के साथ ही कहा और आन्या को लेकर बाइक की तरफ बढ़ गया। सोनिया ने आन्या का बैग और फोन उसे दे दिया। आन्या नशे में थी और अन्वय कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने आन्या के दुपट्टे को उसकी कमर पर लपेटते हुए अच्छे से अपनी कमर से बांध लिया ताकि वो ना गिरे। फिर आन्या की बाहों को अपने सीने पर लपेटते हुए उसे अपनी पीठ पर सर रखने को कहा। आन्या, जो उसके गुस्से की वजह से अब एकदम चुप थी और उसकी सारी बात खामोशी से मान रही थी, अन्वय ने बाइक स्टार्ट की और आगे निकल गया। सोनिया भी ऑटो लेकर घर के लिए चली गई। आन्या नशे में थी, पलकें रह रहकर बंद हो रही थी। रात का समय था, बाइक पर सन्नाटा था और ठंडी हवा बदन को छूकर गुजर रही थी, जो अलग ही सुकून का एहसास करवा रही थी। अन्वय की पीठ से सर टिकाए हुए ही आन्या की आंख लग गई। आन्या को अन्वय के पास रहने पर सुकून मिलता था, इसलिए वो बेफिक्र होकर सो गई। कुछ देर बाद अन्वय ने बाइक घर के बाहर रोकी, हेलमेट उतारा और आन्या के हाथ को थपथपाते हुए बोला, आन्या उठो, हम घर पहुंच गए हैं। आन्या गहरी नींद में सो रही थी, वो हल्का सा कसमसाई फिर वापस सो गई। अन्वय बेचारा अब क्या ही करता, उसने अपना हाथ घुमाकर एक हाथ से पीछे आन्या को पकड़ा और दूसरे से दुपट्टे को खोलने लगा। ये काम काफी मुश्किल था। थोड़ी देर लगी, पर अन्वय ने खुद को और आन्या को उस दुपट्टे के बंधन से आजाद कर दिया। फिर उसने दुपट्टा अपनी गर्दन में लटका लिया। अब मुसीबत ये थी कि आन्या उससे लिपट कर सो रही थी, तो अब नीचे कैसे उतरे? कुछ देर सोचने के बाद अन्वय ने अपने सीने पर लिपटी आन्या की हथेली पर चीटी काट ली। आन्या के मुंह से आह निकल गई, साथ ही उसने अपनी नींद भरी आंखें थोड़ा सा खोला और अपनी हथेली को दूसरी हथेली से सहलाते हुए बोली, कितने बुरे हो तुम। हाँ मैं तो बुरा हूँ, पर तुम तो बहुत अच्छी हो ना, तो अब चुपचाप नीचे उतरो, अन्वय ने हल्के गुस्से से कहा। तो आन्या मुंह फुलाकर नीचे उतर गई, पर उसकी कदम लड़खड़ा रहे थे, इसलिए उसने आन्या की बाँह पकड़ ली। इस वक्त वो बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी जो नींद में थी। अन्वय ने उसकी हथेली देखी, फिर गर्दन हिलाते हुए बाइक से उतरा और बाइक खड़ी करके लॉक लगाया। फिर आन्या की तरफ घूमते हुए बोला, चलो अंदर। आन्या ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया और उसकी बाँह पकड़े हुए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। उसने नीचे नहीं देखा, जिससे कुछ कदम आगे जाते ही उसका पैर वहाँ पड़े पत्थर से टकरा गया। एक बार फिर उसकी आह निकल गई और वो अन्वय की बाँह छोड़कर नीचे जमीन पर बैठकर अपने पैर को देखने लगी। पत्थर से लगने की वजह से नाखून में चोट लग गई थी, उखड़ा नहीं था पर दर्द हो रहा था, इसलिए आन्या रोने जैसी सूरत बनाकर अपने पैर के अंगूठे को फूंक मारने लगी। अन्वय ने उसे देखा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए उसके पास बैठ गया और अपनी हथेली से उसके अंगूठे पर हल्के हाथ से मालिश करते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ देर में ठीक हो जाएगा। उसके दबाने से आन्या को दर्द होने लगा, तो उसने कस के उसकी बाँह पकड़ ली, जिससे उसके नाखून अन्वय को चुभ गए, पर उसने उफ तक नहीं की। कुछ देर उसके पैर की मालिश करने के बाद उसने उसके कंधे को पकड़ते हुए उसे खड़ा किया और आगे बढ़ने लगा, पर आन्या लंगड़ाकर चल रही थी। बेचारा अब और परेशान हो गया और झुककर उसे अपनी बाहों में उठाकर आगे बढ़ने लगा। आन्या के दोनों हाथ हवा में थे और वो अपनी नशीली आंखों को बड़ी बड़ी करके अन्वय को देख रही थी।
अन्वय उसे उठाकर गेट के अंदर आया, फिर किसी तरह गेट वापस बंद किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अब एक और समस्या उसके सामने आ गई। उसे उठाकर भला ताला कैसे खोलता, तो उसने आन्या को नीचे फर्श पर बिठा दिया। ताला खोला और जैसे ही वापस आन्या की तरफ मुड़ा, हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।